थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा है कि प्रभु यीशु हमारा एक सहायक है। हम कैसे परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं? तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे बहुत सारे श्रोता भाई बहन जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंताओं में हैं, पापमय जीवन जी रहे हैं, आप उनके साथ भी हो, उनसे भी बोले और बातचीत करें, ताकि वे इस बात को जानने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और आप उन्हें बचाना चाहते हैं। आज अपने वचन के द्वारा हम सबकी सहायता करें और हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम यह कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हमारे लिए तो परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया है कि उसके पास हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमारे ही नहीं, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। हमें उसकी आज्ञा मानना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए आज पहला यूहन्ना की पत्री 2:3 को पढ़ें। पहला यूहन्ना की पत्री 2:3 में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस पद का अर्थ विश्वासी की सुरक्षा नहीं है। यूहन्ना यहां आश्वासन के अभिप्राय से कह रहा है, परमेश्वर की संतान होने के कारण हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, परंतु हमें यह विश्वास कैसे हो कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं? यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम उसके परिवार के सदस्य हैं। यहां आज्ञाओं का अर्थ 10 मात्र ही नहीं है। यूहन्ना विधि विधान की नहीं, परिवार की चर्चा कर रहा है। 10 एक देश को दी गई थी और हर एक सभ्य देश इसी 10 पर आधारित है। ये 10 उद्धार से रहित मनुष्यों के लिए थी, अपने परिवार के लिए तो उसके पास कुछ और आज्ञाएं हैं। जैसे गलातियों की पत्री 6:2 में उसके परिवार के सदस्यों से कहा गया है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तब हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:2 में पौलुस कहता है, मसीह के परिवार से क्या संबंध है उसके बारे बताता है, तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। इनमें से कुछ आज्ञाएं 1 थिस्सलुनीकियों के अंतिम अध्याय में लिखी है, जिसमें मैंने 22 गिनी है। जैसे सदा आनंदित रहो, परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद से पूर्ण विश्वासी हो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यह प्रार्थना करने की विधि है, अर्थात घुटने टेक कर तो प्रार्थना करो, परंतु सदा प्रार्थना की प्रवृत्ति में बने रहो। तब कहता है आत्मा को न बुझाओ, अर्थात आत्मा से नहीं न कहो। ये कुछ आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु हमें देता है। यदि हमें पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है और उसका आनंद लेना है तथा मन में आश्वासन पाना है तो हमें उसकी आज्ञाएं माननी है। आज्ञाओं को मानना अति आवश्यक है। हम यह न सोचें कि हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी नहीं, हमें प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करना है। कहता है, इससे हम जान जाएंगे कि हम उसे जान गए हैं। याद रखें कि यूहन्ना ज्ञानवाद के प्रतिवाद में यह पत्र लिख रहा है, क्योंकि वे कहते थे कि वे सबसे अधिक ज्ञान रखते हैं, जो एक झूठी शिक्षा थी। यूहन्ना कहता है कि महत्वपूर्ण बात तो प्रभु यीशु को जानना है। अब हमें कैसे विश्वास हो कि हम उसे जानते हैं? मेरे मित्रों, यद्यपि अनेक जन विश्वासी की सुरक्षा में विश्वास करते हैं, उन्हें उद्धार का आश्वासन प्राप्त नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है। यदि हम उसकी आज्ञाएं नहीं मानते तो हमें परमेश्वर की संतान होने का आश्वासन नहीं है। मसीह यीशु की आज्ञा मानना और उसे गंभीरता से पूरा करना ही आश्वासन का आधार है। उसकी आज्ञाओं को माने बिना आपको आश्वासन प्राप्त नहीं होगा। आप अपने आप को झूठी सांत्वना दे रहे हैं या आप झूठी सांत्वना दे सकते हैं, परंतु अपने जीवन में आप हार्दिक विश्वास को नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, गहरा हार्दिक विश्वास नहीं होगा तो कोई भी शांति और आनंद जीवन में नहीं होगा। यूहन्ना आगे कहता है, यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मेरे मित्रों, पिछले अध्याय में यूहन्ना कहता है कि हम जान गए हैं कि हम उसे जानते हैं। यह सकारात्मक पक्ष है। हम अनुभव से ज्ञानवाद के विपरीत जानते हैं। अब वह नकारात्मक शैली में कहता है कि प्रभु यीशु की आज्ञा न मानना इस बात का प्रमाण है कि हम उसे नहीं जानते। प्रभु यीशु की आज्ञा न मानना एक अंगीकार करने वाले विश्वासी की झूठा की पराकाष्ठा है, अर्थात वह झूठा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं, परंतु क्या वे वास्तव में हैं? आप में से कई लोग भी ऐसा कहते हैं और हो सकता है कि आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परंतु आज मैं आपसे भी कहता हूं, क्या आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं? अपने आप को परमेश्वर की संतान कहना एक बात है और अनंत जीवन के भागी होना दूसरी बात है। अनंत जीवन के भागी होने का अर्थ है नया स्वभाव पाना, जो सहभागिता के लिए पिता को पुकारता है और उसकी आज्ञा मानना चाहता है। आप मुझे मानने पर बाध्य नहीं कर सकते कि ये सब कलीसियाई सदस्य जिनमें परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम नहीं है और जो प्रभु यीशु के आज्ञा पालन का उल्लंघन करता है, या यूं कहें कि आज्ञा पालक नहीं, वास्तव में उसकी संतान नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि उन्हें नया जीवन पाने का अनुभव है। यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही जान सकते हैं कि हम उसे जानते हैं। मेरे मित्रों, मैं फिर से आपसे कहता हूं कि यूहन्ना मूसा की व्यवस्था की 10 आज्ञाओं के पालन के विषय नहीं कह रहा है जो परमेश्वर ने इसराइल को दी थी। यूहन्ना प्रभु यीशु की आज्ञाओं के पालन के विषय में कह रहा है, वे आज्ञाएं जो उसने कलीसिया को दी हैं। यदि परमेश्वर की संतान को इन आज्ञाओं से लगाव नहीं है तो वह कड़वाहट से भरा अपराध के दासत्व में है, जैसा कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है। इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु यीशु ने परमेश्वर के विषय कहा था कि वह परमेश्वर पिता के ग्रहण योग्य कार्य ही करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 29 पद में, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं। मैंने अपनी दुर्बलताओं के उपरांत भी अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया है। मैं ठोकर खाता हूं और गिर भी जाता हूं। यह सच है कि जो पुत्र में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 36 पद में है, परंतु इसमें विश्वासी का विश्वास भी जुड़ता है कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है। प्रकृति मनुष्य ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करना कभी नहीं चाही। यूहन्ना का वचन अति कठोर है, कहता है जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और यूहन्ना इस बात की गवाही देगा कि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कह रहा है। मेरे प्रियो, वह मनुष्य जो परमेश्वर की संतान होने का दावा करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है उसमें निश्चय ही सत्य नहीं है। आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं, परंतु उनके जीवन को देखने से कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वे परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर की संतान हैं। आपके दावा करने से कुछ भी नहीं होता है जब तक कि आप उसे सही रूप में ना अपना लें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना कर लें। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद में यूहन्ना कहता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। यहां मैं एक अंतर व्यक्त करना चाहता हूं जिसके विषय बहुत कम टीकाकार चर्चा करते हैं। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञाओं में अंतर है। अब कोई कहेगा कि परमेश्वर की आज्ञाएं उसका वचन ही तो है। जी हां, परंतु आज्ञाएं परमेश्वर का वचन है जबकि परमेश्वर का वचन आज्ञाएं नहीं है। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। वह या तो उसकी आज्ञाएं हैं या अन्य कुछ। परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा का प्रकाशन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 23 पद में वह कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यहां क्या अंतर है? मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मैं खेत से लौटकर गाय का दूध निकालूंगा, अतः तुम स्कूल से लौटने के बाद लकड़ियां काटकर रखोगे कि तुम्हारी माता आग जलाने पाए। वह बालक प्रतिदिन ऐसा ही करता है और उसका पिता खेत से लौटकर गाय का दूध निकालता है। एक दिन सुबह उसका पिता कहता है, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है और खेत पर जाने की शक्ति मुझ में नहीं है, परंतु वह फिर भी खेत पर जाता है। यह बालक जब स्कूल से लौटता है तब वह प्रतिदिन की तरह अपने पिता की आज्ञा मानकर लकड़ी काटता है और लाकर रख देता है, परंतु अब क्योंकि उसका पिता कह रहा था कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, वह गाय का दूध भी निकालता है। इससे आज्ञा पालन और वचन के मानने में अंतर स्पष्ट होता है। उस बालक ने लकड़ियां काटी क्योंकि वह उसके पिता की आज्ञा थी, और उसने गाय का दूध निकाला क्योंकि वह अपने पिता से प्रेम करता था। मेरे मित्रों, इसी प्रकार परमेश्वर की संतान उसकी आज्ञाओं का पालन करती है और उसके वचन को मानती है। वह हर एक बात में अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना चाहती है। मुझे अनेक विश्वासियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे यथासंभव अविश्वासियों का सा जीवन जीना चाहते हैं, परंतु फिर भी विश्वासी कहलाना चाहते हैं। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या वह विश्वासी होने के नाते यह या वह कर सकता है, तो मैं उसे उत्तर देना नहीं चाहता, क्योंकि उसका यह प्रश्न उचित नहीं है। उचित प्रश्न यह है, मैं अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं। मेरे मित्रों, एक सच्चे विश्वासी का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का होता है, न कि मसीही जीवन की रेखा पर जीना। आज के विश्वासी ऊंचे विचार को रखना चाहते हैं। वे शराब नहीं पीते परंतु बियर पीते हैं। उनके विचार में मैं छोटी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हूं। यहां प्रश्न सही और गलत का नहीं है। मेरे मित्रों, मैं आशा रखता हूं कि आप इससे उभर चुके हैं। हमारा प्रश्न है, क्या मेरे इस काम से स्वर्गीय पिता प्रसन्न होगा? मुझे उसे प्रसन्न करना है और उसके साथ सहभागिता करके आनंद प्राप्त करना है। यह सब प्रेम पर निर्भर करता है। ईश्वर ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसने यह भी कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मानेगा। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परंतु उससे अधिक भी उसके लिए कुछ करेंगे। यदि आज आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, और जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही आप जीवन जिएंगे। परंतु ध्यान रखें कि आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आप उसकी संतान हैं, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही उसे प्रसन्न करने के लिए जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे विचार में अधिकांश विश्वासी जानबूझकर किए गए पापों के प्रति सतर्क रहते हैं, परंतु अनजाने में किए गए या किए जाने वाले पापों के प्रति वे निश्चिंत हैं। याकूब के पत्री 4 अध्याय उसके 17 पद में प्रेरित लिखता है कि जो जानते हुए भलाई न करे वह पाप करता है। मैं अनेक ऐसे काम अनदेखा करता हूं जो मैं जानता हूं कि मुझे करना आवश्यक है। ये अनजान में किए गए पाप हैं। बाइबल में दोनों प्रकार के पाप गंभीर हैं। मित्रों, पद 5 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होने का अर्थ है कि आप उसकी आज्ञा मानने से अधिक उससे प्रसन्न करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप का निरीक्षण करें, अपने जीवन पर थोड़ा सा समय दें और देखें कि पाप के प्रति आपका स्वभाव क्या है। क्या इससे आपको अशांति का बोध होता है? क्या इससे पिता के साथ आपकी सहभागिता टूटती है? क्या इसके कारण आप रात में पुकारते हैं, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं और कहते हैं, हे पिता, मैं चूक गया और मैं आपके समक्ष अपनी चूक स्वीकार करना चाहता हूं, मैं आपके साथ सहभागिता में रहना चाहता हूं। इस प्रकार परमेश्वर आपके साथ पुनः सहभागिता स्थापित करेगा। इससे हमारे मन में उद्धार का आश्वासन उत्पन्न होता है, क्योंकि वह हमारी प्रतिक्रिया को देखना चाहता है ताकि वह फिर से सहभागिता रख सके। परंतु क्या आप फिर से सहभागिता रखना चाहते हैं? क्या आप उसकी निकटता में आना चाहते हैं? मेरे श्रोता मित्रों, यदि आज आप परमेश्वर की निकटता में आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, उसके वचन को मानना चाहते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों, ताकि प्रभु आपके पापों को क्षमा कर फिर से आपके जीवन में शांति और आनंद को प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आप हम सब से बातचीत कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि प्रत्येक जीवन बचाया जाए, प्रत्येक जीवन आनंद और शांति को प्राप्त करे। इस समय हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, अपने मनों को फिरा रहे हैं, आपके साथ सहभागिता रखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुने, इस जीवन में कार्य करें, ताकि प्रभु प्रत्येक जीवन आप में बढ़ने पाए, आप में आनंदित होने पाए और निश्चय ही आपको प्रसन्न करने वाला बन सके। इस समय धन्यवाद देते हैं फिर से बार हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमारे श्रोता भाई बहनों को स्वीकार करने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। प्रभु के वचन में बने रहें, उसकी संगति में बढ़ते रहें। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।